प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतदास जी महाराज द्वारा विषय संबंध अभिधेय और प्रयोजन दिनांक 19 जून 2013 को नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में दिया गया है।
तो कल हमने बहुत सी बातें सुनी जो बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने पहले कहा था कि ये 3 दिन सुन के अगर कोई निश्चय कर लेता है कि यही सही है तो उनका आध्यात्मिक कल्याण थोड़े समय में टूक समय में हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी जो सुन रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में हमने सुना था। दोनों यथा योग्य पात्र हैं, श्रोता और वक्ता। तो सनातन गोस्वामी वाराणसी आते हैं चंद्रशेखर के घर, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे। तो आते ही उन्होंने सुंदर प्रश्न पूछा और वो भी हमने देखा कैसे। दंते तृणकम निधाय, मुंह में तृण लेके, अर्थात मैं बहुत तुच्छ हूं। विनम्रता, आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी के लिए सबसे पहले विनम्रता की आवश्यकता होती है हमें इसके लिए, लेकिन शुरुआत में ही विनम्रता और प्रणिपात। उन्होंने प्रणाम किया, शरणागत हो गए और बाद में सवाल किया, बहुत सुंदर, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। सवाल था के अमी केने अमार जारे तापत्रय, यहा नाही जानी अमी के मने हित है। मैं कौन हूं मैं नहीं जानता, और मेरे 3 ताप आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश कैसे दूर हो वो मैं नहीं जानता, और मेरा हित क्या है हिता हित किछु नहीं जानी, मेरा हित क्या है अहित क्या है मैं नहीं जानता। तो मुझ पर कृपा करके ये बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर उत्तर दिया के अमी मैं कौन हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप, आपका रूप स्वरूप आत्मा है, जीव है, जीवेर स्वरूप है। तो ये सवाल का ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान, ये अज्ञानता ही हमारे सब दुखों का कारण है, अज्ञानता। और पहली अज्ञानता क्या है, मैं ये शरीर हूं। तो पहला ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं। आत्मा ये भौतिक जगत की पैदाश नहीं है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उल्टे हैं। मैंने बताया था भौतिक का अर्थ है भूतों से बना हुआ, और 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूत का बना हुआ जो जगत है उनको हम कहते हैं भौतिक जगत, भौतिक इच्छा, भौतिक शरीर, भौतिक 5 भूतों से बना हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम भौतिक नहीं है, हम आध्यात्मिक है, जीव आत्मा, जीवात्मा, जीवात्मा आत्मा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत सत चित आनंद है, सच्चिदानंद। सत यानी सनातन, चित का अर्थ है चिन्मय कॉन्शियस चेतन, आध्यात्मिक जगत चेतन है, ये जगत अजड़ है, अचेतन जड़ है, उल्टा सचित आनंद और आनंदमय है, अर्थात वहां की हर चीज आनंदमय है, आत्मा भी पृथ्वी भी कुछ भी चीज, वहां की सब चीज आनंदमय है। और इसलिए हम आध्यात्मिक होते हुए आनंदमय अभ्यासात, और हम भी आनंद ही है, आनंदमय नहीं, हम आनंद ही है। कृष्ण आनंदमय आनंदित नहीं है, आनंद ही है। आनंद और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते, जैसे आत्मा और आनंद को अलग नहीं कर सकते। आत्मा आनंदमय अभ्यासात, आत्मा आनंदमय अर्थात आनंद ही है। तो जीवेरे स्वरूप हम आत्मा है, और अज्ञानता से हम दुखी होते हैं, और सबसे पहला ज्ञान है मैं ये शरीर हूं, ये सबसे पहला ज्ञान। और हम इतने बुद्धू हैं कि ये जानते हुए भी हम आत्मा के स्तर पर हमेश नहीं रहते, न वर्तन करते हैं, न सोचते हैं, न याद रखते हैं, भूल जाते हैं। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर। हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा हूं, श्री कृष्ण का अंश हूं, अर्थात श्री कृष्ण की शक्ति हूं, इतना ही हमें याद रहे हमेश, तो हमारे आनंद का वर्धन हमेशा होता रहेगा। लेकिन भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, और न तो वो आध्यात्मिक स्तर पर हम रहते हैं, भौतिक स्तर पर। मैं और मेरा, मैं का अर्थ है शरीर, मैं शरीर हूं, और मेरा शरीर के संबंधी मेरे हैं, शरीर से जो भी संबंधित है वो मेरा है, ये दूसरा ज्ञान। पहला ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। दूसरी ज्ञान, दूसरा ज्ञानता क्या है? मेरा जो है वो मेरा है, अर्थात शरीर से जो संबंधित है वो मेरा है, नहीं कि आत्मा। आत्मा के संबंधित तो मेरा है ही, लेकिन वो हम नहीं समझते, अज्ञानता। तो जीवेरे स्वरूप है, हम आत्मा है, और हम कृष्ण के सदैव नित्य दास है। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो यार दुखो नहीं, विश्वास कर लेना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, और श्री कृष्ण का ही, एकमात्र श्री कृष्ण का ही अंश हूं, ये हमेशा याद रहना चाहिए। तो उसको बोलते हैं ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश, और हमें भी सबसे पहला ये तय करना है, हम आत्मा है या शरीर। तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जीव ये तटस्थ शक्ति है, और भेद अभेद प्रकाश, अर्थात जीव ये तटस्थ शक्ति है, मीनिंग अर्थात वो जीव माया में और कई बार योग माया में, योग माया महामाया अर्थात माया, योग माया भगवान की वो माया शक्ति है जो जीव को भगवान के नजदीक ले जाती है, भगवान के उन्मुख करती है। और महामाया भौतिक माया वो शक्ति है जो जीव को भगवान से दूर ले जाती है। तो तथस्थ शक्ति जीव तथस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश, कृष्णेर तथस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। तो वो जीव कृष्ण का अंश है। कैसे अंश है? ऐसा नहीं कि एक बड़ा पत्थर है उनके टुकड़े कर दिए क्वारी में तो बाद में पत्थर का अस्तित्व मिट गया और टुकड़े हो गए, ऐसा अंश नहीं है। यह उदाहरण दिया सूर्यांश किरणे ऐसे अग्नि ज्वाला चय स्वाभाविक कृष्ण वितरण प्रकार शक्ति है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, सूर्य की किरण सूर्य की अंश है, सूर्य के बिना सूर्य के किरण का अस्तित्व नहीं है, और सूर्य अनगिनत किरण फैलाता है तो सूर्य जीरो नहीं हो जाता, सूर्य वही रहता है। तो उसी तरह आत्मा श्री कृष्ण का अंश है, अर्थात श्री कृष्ण की शक्ति है। अपरेयम इतम स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूत महाबाहो अएदम धारयत जगत। मेरी अपरा शक्ति है वो है जीव, जीव भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और बाद में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि एकदेश स्थिताग्ने ज्योत्सना विस्तारणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथा इदम अखिलम जगत। जैसे एक जगह पर अग्नि होता है तो उनकी हीट और लाइट, उष्मा गर्मी प्रकाश सब जगह फैलाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की जीव शक्ति है। भगवान की विविध वसूयते परास्य शक्ति विविध वसूयते स्वभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। ये आगे श्लोक आएगा, इसने पहले कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति, भगवान की तीन शक्ति है वो है चित्त शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। चित्त शक्ति भगवान श्री कृष्ण के धाम में है जिनको हम दिव्य शक्ति परा शक्ति या उनकी स्वरूप शक्ति, तो ये भगवान के धाम में। और हम जीव शक्ति तटस्थ शक्ति न चित शक्ति में न माया शक्ति में, और माया शक्ति ये तीन प्रधान मुख्य भगवान की शक्ति है। हम पुनरावर्तन इसलिए कर रहे हैं कि हमें फाउंडेशन फिक्स करना है, बड़ा नींव सॉलिड नींव डालनी है। तो ये नींव है कि हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पर हमें रहना है, और आत्मा आनंदमय है और हमारा आनंद कभी भी खुटने वाला नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कोई पत्नी है उनका पति चल बसा तो उनके पति का शव अपने सामने पड़ा है और 10 दिन के बाद वो कहेगी कि मैं ये पति के साथ पति के पास पति से मैं आनंद पैदा करूंगी, आनंद का आस्वादन करूंगी। तो आनंद पति के शरीर में था कि पति आत्मा जो है वो आत्मा में आनंद था? आनंद कहाँ था, शरीर में था या आत्मा में था? रोते मेरा पति चला गया तो कौन चला गया, सब सामने पड़ा है और उनका आनंद भी चला गया। आनंद करती थी तो आत्मा में ही आनंद है, आनंद अर्थात आत्मा ही आनंद है, हम ही आनंद है, हमसे आनंद अलग नहीं है। लेकिन वो माया भौतिक शक्ति का आवरण, क्वीन कुंती कहती है माया जवनिका आच्छन्नम, जवनिका पर्दा, माया रूपी पर्दा जवनिका आच्छन्नम, उनसे मैं आच्छन्न हूं, मैं जो हूं वो माया रूपी पर्दे से आवृत हूं। तो ये जीव तथस्थ शक्ति है, वो न भौतिक शक्ति है, जीव भौतिक शक्ति नहीं है, चित शक्ति है, चिदानंद चेतन, और माया शक्ति जड़ है और चित शक्ति चेतन शक्ति है, और जीव मार्जिनल मार्जिनल। सो विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीया शक्तिर इष्यते। ये तृतीया शक्ति है विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, जीव ये तृतीया शक्ति। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी होती है। यह भगवान की तीसरी शक्ति है, माया शक्ति। तीन शक्ति है मुख्य भगवान की शक्ति, परास्य शक्ति विविधैव सूयते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, तीन नहीं है, लेकिन ताते तीन मुख्य, उनमें तीन मुख्य है। विष्णु शक्ति परापरोक्ता, तीन मुख्य, जीव शक्ति तथस्थ शक्ति और चित शक्ति, चिन्मय शक्ति चेतन शक्ति, और जड़ शक्ति भौतिक एनर्जी भौतिक शक्ति, तो इनको बोलते हैं जड़ शक्ति। तो हम चिन्मय हैं, हम आत्मा हैं, और हमारा लगाव जड़ चीजों में है, जड़ जगत में है, और लगाव जड़ जगत में है, इसलिए हमारी चेतना जड़ हो जाती है। चेतन है लेकिन जड़ के साथ, जब घोड़े के साथ गधा आप बांधोगे रखोगे तो वो घोड़ा भी भूखना आहिस्ते आहिस्ते सीख जाता है। उसी तरह आत्मा चिन्मय शक्ति है, लेकिन आत्मा जब भौतिक जगत में भौतिक शक्ति में हमेशा हमेशा लगा रहता है, तो वो भौतिक जगत का जो चेतन, भौतिक जगत का जो स्वभाव है वो स्वभाव पकड़ लेता है जड़। तो अभी से आज का प्रवचन शुरू करते हैं। तो ये जीव क्या होता है, जीव कृष्णा भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः वो माया तारे देह संसार दुख। बहुत स्पष्ट है यहां, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। दो प्रकार के आत्माएं हैं, जीवात्माएं, एक निरन्न मुक्त, यानी कि भगवत धाम में जो हमेश भगवान की सेवा में प्रवृत्त है उनको निरन्न मुक्त कहते हैं। वो कभी भी भौतिक शक्ति में नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो लोगों का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन हमेशा उनको याद रहता है कि मैं भौतिक जगत का नहीं हूं, मैं यहाँ कुछ कार्य करने आया हूं, वो कार्य ही मुझे करना है, बाकी का आध्यात्मिक जीवन। तो ये उनको बोलते हैं निरन्न मुक्त, और दूसरे अनादि बहिर्मुख जीव जिनको नित्य बद्ध कहते हैं, जो सारे जगत में जो जीवात्मा आए हैं नित्य बद्ध, क्योंकि वो भौतिक जगत के साथ बहुत लगाव है और छोड़ना भी नहीं चाहते। लगाव है इतना ही नहीं, भौतिक जगत को छोड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णा भूली इस भौतिक जगत में जो जीव है वो कृष्ण को भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाना। दूसरी बातें मुझे याद आ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, वो नहीं करनी है मुझे अभी। हमें ये तो कृष्ण भूली, कृष्ण ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत के स्रष्टा, सर्जनहार, पालन पोषण, और एकलो ईश्वर कृष्ण, और एक ही परमेश्वर परमात्मा भगवान है, और वो है कृष्ण, और कोई भगवान नहीं। और उनके भगवान कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं स विभिन्नाम स तदेकात्मक रूप, ये सब रूप हम देखेंगे आगे, स्वयं स्वरूप। लेकिन यह जीव जगत में फंसता है, क्यों फंसता है? कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, और वो कृष्ण को भूल जाता है और बहिर्मुख, कृष्ण उन्मुख नहीं, कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से उल्टा, कृष्ण से उल्टा चलता है, भूल जाता है। कृष्ण भूली से ही, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। सिंपल है, जीव अनादि काल से कृष्ण को भूल गया और बहिर्मुख उल्टा चल रहा, और उल्टा ही चल रहा है, इसलिए कृष्ण के नजदीक आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि चल रहा है उल्टी दिशा में। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। इसलिए माया जीव को संसार का दुख देती है, संसार का दुख। कहीं धनवान, कहीं रूपवान, कहीं कुलवान सोचते होंगे मैं, मुझे कोई दुख नहीं, मैं दुख, मैं पैसों से दुख हटा सकता हूं। नहीं, दुख सबसे बड़ा दुख चार, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये चार रोग सबको लगा है। इसलिए सत्य है, सत्य वो है जो सबके लिए सामान्य हो, सबको लगा हो। इसलिए सत्य एज श्योर एज डेथ, सबको लगा है, सबको एज श्योर एज डेथ। कोई नहीं कह सकता राजा या रंक मुझे मृत्यु नहीं आएगा। तो सबसे बड़े दुख चार, जन्म का दुख, माता के घर में टांगे आप सर नीचे और पैक, थोड़ा सा हिल सकते, थोड़ा ज्यादा नहीं, ऐसा आपको 9 महीना में 1000 यार्ड मटेरियल कपड़ा लेके आपको रैप कर दूं, और खान पीन हवा और खाना जूस, एम्बेलिकल कॉर्ड बोलते हैं ना, जो कॉर्ड से जूस मिलता रहता है, ऐसे जूस देता रहा, किसी को अच्छा लगेगा। यहां जेल में सबसे सीवियर जो पनिशमेंट है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अंधियारी कोठरी, 6 फीट बाय 6 फीट बाय 6 फीट, यू नो, टाइट अंधियारी कोठरी में आप, अंधियारा में आपको पूर देते हैं, फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, घबरा जाते हैं। बच्चे को बाथरूम में बोल दो, बाथरूम में तुरंत, माँ क्या कहते हैं, बाथरूम में पूर दो, बाथरूम में तो हर रोज जाता है नहाता है, लेकिन बंद कर दोगे बाथरूम में तो ऐसे टाइट, बर्थ दुख, जन्म ऐसा, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का रोग, बुढ़ापे में दुखी दुख, रोग, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण भूली से ही जीव अनादि काल से बहिर्मुख, अनादि काल से उल्टा चल रहा है, अतएव माया तारे दे संसार दुख। इसीलिए माया उनको संसार का दुख देती है, और संसार किसे कहते हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, इसको संसार कहते हैं। तो ये संसार का दुख कौन देती है, माया। अतएव सो हमें क्या करना है, हम उल्टा चल रहे हैं, विमुख बहिर्मुख विमुख। कृष्णा बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, बहिर्मुख तो उन्मुख होना है कृष्ण की ओर, कृष्ण की ओर, दैट्स ऑल। हमें और कुछ करना नहीं, हमारा जो मुख है वो कृष्ण की ओर हमें ले जाना है, 180 डिग्री टर्न। हो गया हमारा काम। जैसे गुमराह बच्चा हो, मम्मी पापा को गाली देते हुए गुमराह चला गया हो, लेकिन जैसे बच्चा वापस मैं आपका बेटा, मैं उन्मुख हो जाए माँ बाप से, माँ बाप उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, गाली दी थी भाग गया था उन्मुख हो गया था, ऐसा कोई सवाल नहीं कर, तुरंत उनको अपना लेंगे। उसी ही तरह जब हम हमारा मुख भगवान की ओर कर देना है, बस बाकी का काम उनका है, बाकी का काम उनका है, ये देखेंगे हम आगे। और माया, माया क्या करती है, संसार का दुख देती है, संसार का दुख देती है। तो संसार का दुख माया देती, क्या करती है, कभू स्वर्ग उठाए कभू नरके डुबाए, दंडिय जने राजा येने नंदिते चुबाए। जैसे राजा किसी को पनिशमेंट, किसी को पनिशमेंट देना चाहता है तो क्या करता है, राजा उनके सिपाही को बोलता है इनको नदी में डुबाओ, और जैसे वो हवा बहुत दुखी हो जाएगा हवा के बिना, उनको थोड़े के समय, बहुत कम समय के लिए उनको बाहर निकल जाए हवा लेते, फिर से ज्यादातर समय पानी में, तो वो घबरा जाता है हवा नहीं, और थोड़ा समय के लिए उनको बाहर निकलते। ऐसे के तो दंड जने राजा है ना, नदी से चुबाए, नदी में वो डुबाता है राजा उनको दंड देने के लिए, और थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाहर निकलता है, निकालता है तो उनको फिर से। तो माया कैसे जीव को क्या करती है, हमारा ये हाल है, माया हमें ये भौतिक जगत में हमें सफोकेट, यू नो, संसारी दुख, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि, दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश दुख देती है, हर पल हमें पानी में डुबो देती है, और एक क्षण के लिए थोड़ा चपल सुख, कुछ विषय सुख मिल गया जीव को, अच्छा स्वादिष्ट सा कुछ मिल गया तो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा करके फिर से पानी में, कुछ अच्छा सा सुना दिया फिर से पानी में, कुछ थोड़ा सा चपल सुख, कुछ भी चपल सुख दे दिया और फिर से। तो माया ये करती है, दंड जने राजा ये नदी से चुबाए, तो कभू स्वर्ग उठाए कभू नरके डुबाए। माया हमें स्वर्ग में ले जाती है, वहां भी दुख, दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इंद्र को भी दुख, ये यज्ञ कर रहा है मेरा पद ले लेगा इंद्र शत्रु, इसी तरह नरक में तो दुख है ही है। तो स्वर्ग में जाओ फिर से गिरोगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, अहि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। सत्व रजस तमस, ये तीन गुण हमें हमेशा पिटाई करते हैं, तीन गुण, और ये तीन गुण की ही ये माया बनी है, माया शक्ति। तो माया हमें डुबोती है, थोड़ी लिए बाहर निकालती है, लेकिन एक होप है, देर इज अ होप, देर इज नो एटर्नल कंडमनेशन। हमेशा का दुख जीव को नहीं हो सकता, अगर जीव चाहे तो वो आत्यंतिक दुख निवृत्ति कर सकता है। तो ये शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, से ही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, सारे नोट करो आप लोग, ये बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। और आपको पेन और पेपर लेके आना चाहिए। इस्कॉन में जब भी आप कोई भी जगह जाओ तो नोटबुक और पेन साथ में होनी चाहिए, तो तुरंत आप लिखते रहो और उनको घर जाके पढ़ते रहो। तो साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, सही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। तो जीव को होप है, देयर इज ए होप। जीव ये बहिर्मुख, बहिर्मुख हो गया है। तीसरा श्लोक, कृष्णा भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। और यह शास्त्र साधु कृपाए आदि कृष्णा उन्मुख होय, सही जीवन स्तरे माया तार छुड़ाए। माया उनको छोड़ देती है। किसको छोड़ देती है? जिनको शास्त्र साधु गुरु, साधु मीन्स गुरु, गुरु मीन्स साधु। सो शास्त्र गुरु, शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्णा उन्मुख होय, तो हमें दो जगह से हमें कृपा मिल सकती है। शास्त्र भगवत गीता, भागवत, ये दो ग्रंथ हमारे वैदिक साहित्य में सबसे उच्च प्रकार के दो ग्रंथ हैं, गीता और भागवत। तो ये गीता का और भागवत का हमारे ऊपर अगर अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए, शास्त्र और साधु, साधु का संग एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनी याद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग, ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड साधु संग हो जाए। और वो साधु संग भी तभी मिलता है जब हमारा पूर्व जन्मों का कृष्ण भक्ति सुकृत, सुकृति कृष्ण, कृष्ण भक्ति जन्य सुकृति। कौन सा पुण्य कर्म? भक्ति जन्य सुकृति। अगर भक्ति जन्य सुकृति हमने कुछ की हो तो हमें क्या मिलता है? साधु संग मिलता है, साधु संग। और साधु संग मिलने से हमें क्या मिलता है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण उन्मुख, कृष्ण उन्मुख हो जाते हैं। तो शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, सही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। और वो जीव का उद्धार हो जाता है, उदाहरण, वो जीव भौतिक जगत से मोचन, भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है वो जीव। तो शास्त्र की कृपा चाहिए। और शास्त्र, शास्त्र साधु और गुरु, प्रभुपाद जी कहते हैं ये तीनों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अर्थात शास्त्र साधु एंड गुरु, ये तीनों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मन माना मैंने लिख दिया और शास्त्र है ये मेरे संप्रदाय, मेरे शिष्यों के लिए ये शास्त्र है, नहीं। शास्त्र साधु और गुरु से प्रमाणित होना चाहिए। सब साधु कहेंगे कि हाँ, गीता भागवत वेद इतिहास पुराण ये शास्त्र है। और गुरु भी से प्रमाणित शास्त्र होना चाहिए, साधु और गुरु से प्रमाणित शास्त्र होना चाहिए, और गुरु शास्त्र और साधु से प्रमाणित होना चाहिए, और साधु गुरु और शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। तो ऐसे शास्त्र की अगर कृपा हो जाए, भागवत गीता और भागवत ये हमारा धर्म पुस्तक है, और ये भागवत और गीता का हमारे ऊपर कुछ आशीर्वाद, हमारे ऊपर कृपा हो जाए, और साधु की कृपा। साधु जगत में कई साधु प्रचार कर रहे हैं, और कुछ साधु शास्त्र और गुरु से प्रमाणित होना चाहिए। मीरा, नरसिंह, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार स्वामी, विष्णु स्वामी, प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, कई कई साधु हैं। तो ये शास्त्र से और गुरु से प्रमाणित होने चाहिए। तो ऐसे साधुओं की कृपा अगर हो जाए, शास्त्र की हमारे ऊपर अगर कृपा हो जाए, तो शास्त्र, साधु, कृपाएं, यदि जीव जीव पर कृपा हो जाए, और यदि वो जीव कृष्ण उन्मुख हो जाए, कृष्ण उन्मुख विमुख अनादि बहिर्मुख जीव, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तारे जापोटी आधरे। माया उनको मार मारती है, जापोटिया। तो यह शास्त्र और साधु दोनों का हमें क्या चाहिए? कृपा चाहिए। तो शास्त्र और साधु में कृपा के लिए हमें कुछ करना होगा। अगर बच्चा माँ की कृपा चाहता है तो रोना पड़ेगा, मुझे अभी खिलाओ, मुझे स्तनपान कराओ। तो माता में वो बच्चा रो के कृपा पैदा करता है। माँ वहाँ काम में लगी है, खाना पकाने में लगी है, बच्चा वही है, भूखा है, लेकिन जब तक वो बच्चा माँ में बच्चे के लिए कृपा पैदा नहीं करेगा, तब तक मिलने वाला नहीं है, स्तनपान मिलेगा नहीं, दूध मिलेगा नहीं। उसी तरह साधुओं में अगर हम कृपा उत्पन्न करना चाहते हैं, तो साधुओं के अंदर हमारे लिए कृपा कैसे पैदा हो, ऐसी सेवा करना होगा, साधुओं की सेवा करना होगा। और सेवा कई प्रकार की है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन साधु सेवा, किसी भी माँ बाप की सेवा करोगे, माँ बाप में आपके लिए कृपा उत्पन्न होगी, या कोई भी कुत्ते में आप सेवा करोगे, कुत्ते की, कुत्ता प्यार करेगा, है ना, कुत्ता प्यार करेगा आपके, कुत्ता कृपा करेगा आपको। तो सेवा, साधुओं की अगर हमें कृपा चाहिए, तो साधु संग उनकी वाणी की सेवा करना चाहिए। वाणी और वपु, साधु की वपु उनके शरीर की सेवा, अर्थात सीख है या मसाज किया, या उनके चरणों का इन आशीर्वाद लिया, तो वपु सेवा है। लेकिन श्रेष्ठ सेवा है वाणी, वो जो कहे तुरंत करना, तुरंत। प्रभुपाद जी ने कुछ कहा नहीं और हमने कुछ किया नहीं, तुरंत कर दिया। तो वाणी से साधुओं की सेवा, तो इससे ज्यादा कृपा मिलती है, तुरंत कृपा मिलती है, साधु प्रसन्न हो जाते। हम उनकी वाणी को लोपते नहीं, उनकी वाणी की सेवा करते हैं, वो कहे वैसे हम कर लेते हैं, तुरंत कृपा। और शास्त्र में कृपा कैसे पैदा करेंगे हम? शास्त्र में दृढ़ विश्वास, शास्त्र में जो लिखा है वो एब्सोल्युटली ट्रूथ है, एब्सोल्युट ट्रूथ, वो सत्य ही है। शास्त्र को सत्य करी मानी, शास्त्र में जो भी लिखा है वो सत्य है। ये शास्त्रों की सेवा है कि शास्त्र में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, जो भी शास्त्र में लिखा है वो सत्य है। ये शास्त्रों की कृपा पैदा करने के लिए हमें ये करना होगा, अटल श्रद्धा शास्त्रों में, जो भी शास्त्र में लिखा है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। भगवद गीता में भागवत ने जो भी लिखा है, प्रमाणम अमलम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भागवत ये अमल प्रमाण है, स्पॉटलेस प्रमाण। कुछ भी आपको जानना है तो सही जानना है, और सत्य जानना है तो तो भागवत जो कहती है वो सत्य है। ऐसी श्रद्धा ये शास्त्रों में, शास्त्रों से कृपा पैदा करने का तरीका है। शास्त्रों में श्रद्धा, शास्त्र में जो भी लिखा है सत्य है, और साधुओं की वाणी की सेवा तो जल्दी कृपा मिलेगी, और कृपा मिलेगी तो हम क्या होंगे, कृष्ण उन्मुख होए। शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, सही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए, और माया उनको छोड़ देती है, माया उनकी सबसर्वियंट बन जाती है। भक्त की माया क्या बन जाती है, सेविका बन जाती है। हे भक्तराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुक्ति भुक्ति सिद्धि सब मुकुलित मुकुलित हाथ से जोड़ के, हाथ जोड़ के भक्तराज के द्वार पर खड़ी रहती है, क्या सेवा करूं। ऐसे माया भी भक्तों की सेवा, माया भी भक्तों की सेविका बन जाती है। माया तहर छुड़ाए, माया उनको छोड़ देती है कि ये अभी कृष्ण का बन गया, अभी मेरा हक इनके ऊपर नहीं है। तो ये हमें चाहिए, शास्त्र साधु कृपा यदि कृष्ण उन्मुख होए, से जीवन स्तरे माया तहर छुड़ाए। बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये माया लांगवी बहुत मुश्किल है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर हमें माया तैर जाना है तो क्या करना होगा, प्रपद्यन्ते प्रपन्ना प्रपन्न शरणागत शरणागत होना होगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम कृष्ण उन्मुख, कृष्ण की शरणागति, कृष्ण की शरणागति स्वीकारना होगा। कृष्ण की शरणागति का अर्थ है छह प्रकार की शरणागति है। शरणागति कितनी कितनी है, छह। कौन सी, अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयतीति विश्वासो, गोपृत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप काल्पनीय सर्वविधा शरणागति। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस शरणागति पर बहुत अच्छा सारा पुस्तक सॉन्ग लिखा है, सुंदर काव्य लिखा है। शरणागति सर्वविधा शरणागति, अनुकूलेन संकल्प, भगवान श्री कृष्ण को जो भी अनुकूल है वो तुरंत करना, तुरंत सोचने के बिना, बुद्धि मत लगाना। भगवान श्री कृष्ण को जो भी अनुकूल है उनका तुरंत स्वीकार करना, उनको बोलते हैं शरणागत शरणागति। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, और भगवान श्री कृष्ण को जो प्रतिकूल है उनको तुरंत छोड़ देना, तुरंत त्यागना। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, मैं क्या वर्णन कर रहा हूं, शरणागति। ये मामेव प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरणागत होता है, प्रपद्यन्ते। तो छह प्रकार की शरणागति है, भगवान श्री कृष्ण को जो अनुकूल है तुरंत स्वीकार करना, भगवान श्री कृष्ण को जो प्रतिकूल है उनको तुरंत त्याग देना। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयतीति विश्वासो, और श्री कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास, ये शरणागति है। रक्षयतीति विश्वासो, गोपृत्वे, और भगवान श्री कृष्ण मेरा हर हालत में भरण पोषण करेंगे ही, ऐसा विश्वास। गोपृत्वे वर्णनम तथा, श्री कृष्ण मेरे भरण पोषण मेरा करेंगे ही, ऐसा विश्वास, उनको क्या बोलते हैं, शरणागति। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्षयतीति विश्वासो, गोपृत्वे वर्णनम तथा। आत्मनिक्षेप, न्योछावर कर हमारे हमारी जात को, हमारी आत्मा को भगवान श्री कृष्ण में न्योछावर करना, आत्मनिक्षेप, आत्मनिवेदन करना, आत्मनिक्षेप, काल्पन्य, काल्पन्य का अर्थ है विनित, विनम्रता, विनम्रता, आत्मनिक्षेप, काल्पन्य, काल्पन्य मीन्स विनित, विनम्रता, प्रपन्न, आत्मनिक्षेप, काल्पन्य, सर्वविधा, शरणागति, ये छह प्रकार के शरणागति हैं। तो ये प्रपन्न मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम हितम तरंतिते, तो वो माया को तर जाता है जो श्री कृष्ण भगवान की शरणागति स्वीकारता है। तो देवी ऐशा गुणमयी, तीन प्रकार की गुणमयी जो माया है उनको वो लांग जाता है। तो माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया से मुग्ध जीव को श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं होता, इसलिए जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण, इसलिए कृष्ण ने वेद और पुराण किए। भगवान श्री कृष्ण ने वेद पुराण क्यों किया? माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, वो अज्ञानी है, वो बुद्धू है जीव, और कलयुग में जीव बुद्धू नहीं है, बुद्धू का बाप है। पहले भागवत ने सबसे पहले कहा कि कलयुग का जीव बुद्धू का बाप, सुमंदा प्रायण अल्प आयुष्या कलो अस्मिन युगे जना, मंदा मंदा बुद्धू, मंद मतयो सुमंद मतयो, मंद मति बुद्धि मंद का अर्थ बुद्धू, मंद मति का अर्थ क्या है? बुद्धू, एंड सुमंद मति बुद्धू का बाप, सुमंद मतयो मंद भाग्या, उनके भाग भी मंद है। उपद्रुता ऑन टॉप, ये मनुष्य क्या है? उपद्रुत, रोग से पीड़ित, रोगिस्ट, 100 साल तक जीना चाहिए लेकिन 70 में 60-70 बस हो गया, उपद्रुता। सुमंद मत, कलयुग का जो मनुष्य है सुमंद मति बुद्धू का बाप। तो यह माया मुग्ध जीवर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, बुद्धू है कलयुग का जीव, इसलिए उनको कृष्ण का ज्ञान नहीं है और भटक रहे हैं, ये भगवान वो भगवान, ये बाबू ये बापा, और ये भटक रहे हैं जीव और बुद्धू, कृष्ण का ज्ञान नहीं है। इसीलिए जीवर कृपार कैला कृष्ण वेद पुराण, कृष्ण भगवान ने कलयुग के जीव के लिए श्रुति स्मृति नहीं रखा आकाश में, क्लाउड बोलते हैं ना, क्लाउड में सब कंप्यूटर क्लाउड में सब कुछ बुलाते करते हैं आजकल। तो पहले के जमाने में वेद पुराण कैसे थे? क्लाउड में, श्रुति और स्मृति फॉर्म में, गुरु बोलते थे और शिष्य लोग उनको स्मृति याद कर लेते थे, नो रिटन फॉर्म। पर वेद व्यास कृष्ण द्व्यापन व्यास ने वेद पुराण किया ताकि कलयुग के जीव का कल्याण हो, भगवत श्री कृष्ण भगवान उन्मुख जीव हो, इसलिए ये वेद और पुराण किए। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपनारे जनान, कृष्ण मेरा प्रभु जात्राता जीव रहे ज्ञान। कृष्ण आत्म विस्मृति विस्मृत बद्ध जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ में समझ, यथार्थ में समझ सकता है और यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उनके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वे अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। तो वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्तिर साधन। सुंदर बात। तो वेद शास्त्र क्या कहते हैं? सब शास्त्र, ये पुराण हो या कुरान हो या बाइबल हो या वेद हो, सब शास्त्र ये तीन चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, हमारा जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, संबंध। अभिधेय, अभिधेय ये श्री कृष्ण भक्ति है, आगे आएगा श्री कृष्ण की भक्ति, ये अभिधेय है, कैसे भगवान कृष्ण का प्रेम संपादित करें उसको बोलते हैं अभिधेय। और प्रयोजन हमारा क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना, ये हमारे जीवन का एकमात्र परम चरम लक्ष्य है। तो ये प्रयोजन, प्रेम प्रयोजन। सो अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। सो अभिधेय, अभिधेय का अर्थ है प्रोसेस, वो रास्ता जिससे हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिले, तो वो है भक्ति। आगे आएगा न कर्म योग, न ज्ञान योग और न अष्टांग योग, अकेले भक्ति योग। तो आगे देखेंगे हम। तो अभिधेय नाम भक्ति, अभिधेय किसे कहते हैं? अभिधेय किसे कहते हैं? भक्ति को। और प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रेम, श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना, यही एकमात्र मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन हमारे सबका जीवन का लाइफ मिशन स्टेटमेंट क्या है? श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना। तो ये प्रेम प्रयोजन। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति रे कारण, कृष्ण सेवा करे और कृष्ण रस आस्वादन। सो कृष्ण माधुर्य सेवा आनंद प्राप्ति रे कारण। सो सबसे श्रेष्ठ आनंद, सर्वश्रेष्ठ आनंद कहाँ मिलता है? श्री कृष्ण के माधुर्य में। और माधुर्य भक्ति, मधुर माधुर्य भक्ति। तो वे दृष्टांत देते हैं, तो मैं दृष्टांत जल्दी जल्दी मैं संपन्न करूंगा। दृष्टांत क्या है कि दरिद्र के घरे सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछे तहारे। दरिद्र जो निर्धन था, वो निर्धन के यहाँ एक वैदा, एक ज्योतिष आता है, जो ज्योत जो यू नो साइकिक आता है, साइकिक इंग्लिश में बोलते हैं साइकिक। तुम्हें क्यों नहीं दुखी? तुम्हारा आचे पितृ धन, तुम्हारे ना कही अन्यत्र छाड़िए जीवन। आप और वो ज्योत ज्योसी जो जिनको ज्ञान होता है तो वो कहता है कि आप निर्धन हो, आप दुखी हो, जीवन आपका दुखी है। तो जोशी कहता है निर्धन को कि आपको पता नहीं है कि आपके पितृ ने, आपके पिता ने एक चरु धन एक कमरे में, आपके कमरे में धन डाटा है, धन जमीन के नीचे रखा है। तो वो आपको पता नहीं है। तो कहते हैं सर्वज्ञ वाक्य करे धने उदेश पूछे वे पुराण जीवे कृष्ण उपदेश। तो ज्योतिष एक कृष्ण उपदेश करने वाले साधु। तो सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंधन सर्वशास्त्र उपदेश है श्री कृष्ण संबंध, श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है तो ये हमारा सुख हमें धनी बना सकता है। तो बापर धन आचे गाने ज्ञानी धन नहीं पाए तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति रूपाए। तो यहां अगर दक्षिण है तो आप ये वो निर्धन व्यक्ति का कमरा था तो ज्योतिष कहता है कि आप दक्षिण खोदोगे तो क्या होगा वहां मधुमक्खी और आपको खा जाने वाली मक्खियां मिलेगी वो बाहर निकलेगी और आपको चिटकल आपको काटेगी तो वहां आपका काम नहीं होगा। और पश्चिम में खोदोगे तो यक्ष निकलेगा एक भूत निकलेगा और वो आपको खा जाएगा वो भूत निकलेगा प्रेत निकलेगा और ये भूत आपको खा जाएगा। तो यहां आगे जाते हैं तो कंपैरिजन करते हैं कि कर्म योग ये भूत है और ज्ञान योग ये मक्खियां हैं खाने वाली। आगे बताएंगे आपको यहां संदर्भ आपको कनेक्शन दे रहा हूं। और उत्तर खोदोगे तो क्या मिलेगा उत्तर में खोदोगे तो वहां विशाल काला नाग मिलेगा वो आपको खा जाएगा तो वहां भी आपका काम नहीं होगा। और पूर्व दिखे तारे माटी अल्प खुदी थे धनेर जारी पड़ी भी तुम्हारा हाथे थे। तो पूर्व में खोदोगे तो तुरंत आपको वो चारु मिलेगा धन का मटका मिलेगा मटके में जो अखूट धन है वो मिलेगा। तो वो है भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग और कर्म योग ज्ञान योग और यानी आगे आगे बात करेंगे। तो यह एक है कर्म योग ज्ञान योग और योग एक कर्म ज्ञान और योग ये तीनों को अलग कर दिया योग। तो कर्म ज्ञान और योग ये तीन त्यजी व्यक्ति कृष्ण वश है भक्ति तारे बजी। तो तीन कोने में कर्म योग मधुमक्खी काटेगी ज्ञान योग क्या वो भूत ज्ञान योग क्या है भूत काटेगा और योग मेडिटेशन ध्यान करना आत्मा को। तो ये योग ये क्या है काला सांप खा जाएगा आपको। और चरु जो धन राशि मटका निकलेगा पूर्व की ओर तो वो क्या है कृष्ण भक्ति। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान तथा योग का परित्याग करके भक्ति को ग्रहण करना चाहिए जिससे कृष्ण पूर्णतया तुष्ट हो सके जिससे कृष्ण पूर्णतया हमारे वश हो जाते हैं। तो न साधयति माम योगो सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्तिर उर्जिता। तो यह भगवान उद्धव को कहते हैं क्या कहते हैं भगवान कृष्ण मुझे अगर खुश करना है तो क्या करना होगा स्वाध्याय न साधयति माम योगो योग से मुझे आप प्रसन्न मुझे नहीं कर सकते न माम साधयति योगो सांख्यम धर्म सांख्य योग से भी मुझे आप प्रसन्न नहीं कर सकते और न स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन रिपीटेडली अध्ययन करना न स्वाध्याय तप त्यागो और तप भी मुझे प्रसन्न नहीं करेगा न स्वाध्याय तप त्यागो संन्यास भी मुझे प्रसन्न नहीं करेगा। संन्यास न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्तिर उर्जिता, जैसे मुझे आप भक्ति से प्रसन्न कर सकते हो वैसे मुझे न त्याग न तप न योग न सांख्य न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्तिर उर्जिता, मेरी जो भक्ति है उससे मुझे आप प्रसन्न कर सकते हो। उदाहरण ले सकते हैं, एक पत्नी है और पति है, काम पर जाते हैं बिजनेस पे जाते हैं, और पत्नी जब पति घर आता है तो उनको बोलते हैं, पत्नी बोलती है आई लव यू, आई लव यू, आई मेडिटेट ऑन यू, आई कनेक्ट विथ यू, आई योगा फॉर यू एंड आई डू ज्ञान, आई रीड सो मच नॉवेल्स और सो वट एवर आई रीड ज्ञान और सब किया, लेकिन भक्ति उनके लिए भक्ति सेवा नहीं कि खाना पकाना उनकी लॉन्ड्री करना कुछ नहीं, आई लव यू आई मेडिटेट ऑन यू, आई मेडिटेट ऑन यू, बट नो खाना नो सेवा नो नथिंग। सो हाउ लॉन्ग ये चलेगी, पत्नी पति कब तक चलेंगे? पति को खुश करना है तो उनकी भक्ति सेवा सेवा से ही पति खुश हो सकता है, ध्यान से नहीं। ध्यान योगी लोग ध्यान करते हैं ओ वगैरह ध्यान करते हैं, पति का ध्यान सेवा भक्ति सेवा करनी होगी, भक्ति करनी होगी। तो भगवान यहां क्या कहते हैं, नमाम साधयति योगो सांख्यम धर्मम युद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा मम भक्तिर उर्जिता, मेरी भक्ति से जैसे मैं प्रसन्न होता हूं वैसे स्वाध्याय और तप त्याग योग ज्ञान से मैं प्रसन्न नहीं होता। भक्त्या ही एकया ग्राह्य श्रद्धात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्व पाकानपि संभवात, भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण मुझे अविचल श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। भगवान को कौन प्राप्त कर सकते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति है उनके द्वारा भगवान को अविचल भक्ति, यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बताता है चंडाल तक को शुद्ध करने वाला है। क्या भक्ति योग? भक्ति तो यथार्थ भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है, भक्ति से। नो अदर तप ज्ञान वगैरह, भूत स्नेक मधुमक्खी, नो ऑल दिस प्रोसेस, तप या का तीन योग ज्ञान और कर्म, ये तीनों से भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। किससे प्रसन्न होंगे? भक्ति। और भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? सेवन मुख्य है जीवा दो, मुख और जीभ से हरे कृष्णा हरे तो अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्य उपाय अभिदेव बलि तारे सर्व शास्त्र गाय, भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, अभिधेय भक्ति ही अभिधेय है, और कुछ अभी और अभिधेय नहीं चलेगा, भक्ति ही सर्व शास्त्र गाय। और ये सब शास्त्रों में कहा है और भगवान कृष्ण भी खुद यही कह रहे हैं कि मुझे अगर प्रसन्न करना है भक्ति। धन पाई ले छे सुख भोग फल पाए, सुख भोग होते सुख आपनी पलाए, तो जैसे सुख आता है दुख पलायन हो जाता है। तो सुख कैसे आएगा? भक्ति से। न योग, न ज्ञान, न कर्म। इस तरह भक्ति के फल स्वरूप मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो उठता है। जब मनुष्य भगवान कृष्ण की संगति का आस्वादन कर सकने के योग्य हो जाता है, तब यह भक्ति संसार जन्म तथा मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है और दारिद्र्य नाश हो जाता है, भव क्षय हो जाता है। प्रेमेर फल नहीं, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन ही। भगवत प्रेम का लक्ष्य न तो भौतिक दृष्टि से धनी बनना है, न ही भव बंधन से मुक्त होना है। वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की भक्ति में सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद भोगना। तो दिव्य आनंद भक्ति में स्थित होके हमेशा भगवान के साथ, भगवान के पास। इसलिए वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं? कृष्ण ही हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम का प्राप्त करना ही है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना। अगर कृष्ण का प्रेम चाहिए हमें, तो क्या करना होगा? कृष्ण की सेवा अर्थात भक्ति। जैसे आप कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ते की भक्ति करोगे, तो कुत्ता आपसे प्रेम करेगा, है ना? कुत्ता। तो उसी तरह कृष्ण की सेवा करोगे, प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की सेवा करोगे तो क्या होगा? कृष्ण आपको प्रेम करेंगे। सिंपल। और जो कृष्ण की सेवा करना अर्थात भक्ति करना। भक्ति ही सेवा है, सेवा ही भक्ति है। तो वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। हमारा प्रेम का प्रतीक कौन है? कृष्ण। हमारे प्रेम का प्रतीक कौन है? कृष्ण। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द तब मिटे जब वैद सावरिया होई। कृष्ण वैद हो तो मेरा तुरंत दर्द मिट जाए, क्योंकि प्रेम का प्रतीक कृष्ण। मिल गए, वैद सावरिया होई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को भोग न बायो, साग विदुर गर खाई। सबसे ऊंची तो ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण भक्ति और कृष्ण, ये तीन महाधन। वेद आदि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध, तार ज्ञाने अनुसंगे आय माया बंद। वेद आदि सकल शास्त्र में क्या कहा है? कि आकर्षण के केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण ही है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? कृष्ण। और जब कृष्ण विषय पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, तो माया का बंधन स्वतः आपो आप, कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भक्ति करने से माया आपो आप छूट जाएगी, कोई दूसरा अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा और कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। और वेद शास्त्र कृष्ण को ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य बताते हैं सब शास्त्र। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शब्दाधिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है, तो वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करती है। तो सब शास्त्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य किसे बताते हैं? श्री कृष्ण को ही बताते हैं। नो अदर लक्ष्य, देवी देवता मनुष्य यक्ष धन दौलत कोई लक्ष्य, एक लक्ष्य मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक तीर निशाने पे लगाना है, तो निशाना है कृष्ण और हमारा तीर है प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये सब शास्त्र कह रहे हैं। तो कृष्ण का दिव्य स्वरूप अनंत है और उनका ऐश्वर्य अपार है, वे अंतरंग बहिरंग तथा तटस्थ शक्तियों के स्वामी है। अभी चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विस्तार का वर्णन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मूल एक जो व्यक्ति भगवान है वो है कृष्ण, एकलो ईश्वर कृष्ण, ईश्वर एक है और वो कृष्ण है और उनका मूल स्वरूप है ग्वाल। वृंदावन में व्रज में वो ग्वाल है और वो ग्वाल है उनका, उनको अभिमान है। जैसे किसी को अभिमान हो मैं ऊंचा कुटुंब का हूं, मैं पैसादार हूं, उनका अभिमान उनको होता है। तो वैसे ही कृष्ण को मैं ग्वाला हूं उनका अभिमान है। तो भगवान का मूल स्वरूप ये ग्वाला है कृष्ण का और उनकी उम्र 16 साल की और तब तक भगवान यहां आते हैं तो लीला करते हैं बालक से लेके तरुण 16 साल की उम्र तक, उनकी मधुर लीलाएं हैं वो सब अभी यहां समझाएंगे। मैं सिनप्सिस आगे आगे कह रहा हूं ताकि आपका ध्यान उसमें रहे कि भगवान कौन है, उनके अवतार कितने हैं, देवी देवताएं कौन है, मनुष्य कौन है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत है क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु आगे बताने जा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण स्मशाय स्माश्रय। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर है, अतः भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही है। तो ये भौतिक जगत कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया शक्ति जड़ शक्ति ने बनाया है। ये जड़ शक्ति माया शक्ति ये भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी कंट्रोलिंग पावर दुर्गा देवी, दुर्गा ये भौतिक जगत की कंट्रोलिंग एजेंसी शक्ति कंट्रोल करने वाली। तो दसवां स्कंद श्रीमद् भागवत का दसवां स्कंद ये लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बताने वाले हैं जो समस्त शरणागतों के आश्रय हैं। दसवां स्कंद कृष्णा स्टोरी बुक जिसे हम कहते हैं, प्रभुपाद जी ने अलग पुस्तक कर दिया क्योंकि वो कल्याणकारी पुस्तक है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो समस्त शरणागतों के आश्रय है, दसवां स्कंद वे श्री कृष्ण नाम से विख्यात है और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत है। कृष्ण ही परम स्रोत है सब ब्रह्मांड के, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। कृष्ण ने स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वै ज्ञान तत्व व्रजे व्रजेंद्र नंदन। हे सनातन, अब मुझसे भगवान कृष्ण के सनातन स्वरूप के विषय में सुनो। भगवान श्री कृष्ण का सनातन स्वरूप उनके बारे में सुनो। वे द्वैत भाव से रहित परम अद्वैत सत्य है किंतु वे वृंदावन में नंद महाराज के पुत्र रूप में रहते हैं, ये उनका मूल स्वरूप है। ये वृंदावन में 16 साल की उम्र तक सुंदर रासलीला जैसे मधुर लीलाएं करना। सर्वादि सर्वांशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है और हर वस्तु के सर्वांश है, हर एक कांश है। वे सर्वोत्कृष्ट किशोर रूप में प्रकट होते हैं और उनका सारा शरीर आध्यात्मिक आनंद से बना हुआ है। श्री कृष्ण का शरीर किससे बना है? आध्यात्मिक आनंद से। अर्थात कृष्ण का शरीर और कृष्ण अलग नहीं है, इसलिए कृष्ण और आनंद अलग नहीं है। आनंद ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। वे हर वस्तु के आश्रय तथा हर एक के स्वामी है। कृष्ण ही सबके स्वामी, कृष्ण ही सबके आश्रय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण ही सबके कारणों के कारण है और परम परम ईश्वर है और सच्चिदानंद रूप है और अनादि है और आदि भी कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण, ये श्लोक सुंदर है, लिखो। ये भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदा पर नाम सर्व ऐश्वर्य पूर्ण यार गोलोक नित्य धाम। सो कृष्ण ये स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदा पर नाम, और वो कृष्ण सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, और उनका घर का एड्रेस क्या है? गोलोक नित्य धाम। वो गोलोक में हमेशा वास करते हैं। एतत् अंशः कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। तो श्रीमद् भागवत में पहले तीसरे अध्याय में सब उनके अवतारों का वर्णन किया, कृष्ण के अवतारों का। बाद में श्लोक ये श्रीमद् भागवत का परिभाष सूत्र श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के दो श्लोक पर सारी रचना हुई है श्रीमद् भागवत की, और ये दो श्लोकों में से एक ये श्लोक है जिसको हम परिभाष ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की डेफिनेशन व्याख्या तो परिभाषा का ये श्लोक है। तो सारे अवतारों का वर्णन किया, और बाद में वेदव्यास कहते हैं कि ये ऊपर जो मैंने सारे अवतारों का वर्णन किया ये सब अवतार है, लेकिन कृष्ण वो अवतार नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और इंद्र अरि व्याकुलम लोकम। इंद्र के दुश्मन जब ये लोकों को, ये लोक को बहुत दुखी करते हैं, इंद्र के दुश्मन अर्थात राक्षस, तो इंद्र आदि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे। तो यो हर युग में खुद आते हैं या तो उनके अवतार भेजते हैं, कृष्ण आते हैं या कृष्ण के अवतार कृष्ण भेजते हैं, वो ही हम देखेंगे कृष्ण के अवतार सारे आगे। तो ये परिभाष सूत्र है भागवत का, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ज्ञान योग भक्ति तीन साधनेर वशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। तो भगवान ये इनके बात का श्लोक देते हैं। हाँ, ये परिभाष सूत्र दूसरा। जो पहला परिभाष सूत्र मैंने बताया कौन सा? एते अंश कलापुंस, और ये दूसरा वदन्ति तत्वविदं तत्वं यद् ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज वन। भगवान एक ही है, या तो परमात्मा एक ही है या तो ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो अलग अलग स्वरूप में दिखाई देते हैं हमें। तो वदन्ति तत्वविदं तत्वं यद् ज्ञानं अद्वयं। जो तत्ववेत्ता है वो एक ही सत्य को तीन रूपों में बताते हैं। कोई ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म ज्योति या तो अणु अणु में, कण कण में प्रसरित ब्रह्म के रूप में सत्य को बताते हैं। कोई परमात्मा के रूप में सत्य को बताते हैं, हमारे हृदय में जो भगवान है परमात्मा के रूप में, और कोई भगवान के रूप में सत्य को बताते हैं। तो वो सत्य है कृष्ण, वो सत्य वदन्ति तत्वविदं तत्वम यद ज्ञानं अद्वयम्। तो तत्व एक कृष्ण है, सत्य एक कृष्ण है, तो ये तीन रूपे प्रकाश है। आगे वाला जो श्लोक है, ये ज्ञान योग भक्ति से, ज्ञान से हमें ब्रह्म का अनुभव होता है, जो अणु अणु में पसरे हुए निराकार स्वरूप, जो भगवान अपनी ब्रह्म शक्ति से, जो उनमें उनकी शक्ति न्यून शक्ति होती है, ब्रह्म में हर जगह फैला हुआ निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म, कोई गुण नहीं होता। तो ब्रह्म के उपासक जो होते हैं वो ज्ञानी लोग हैं, और योग से परमात्मा का, जो हृदय में चार हाथ वाले परमात्मा है उनका ध्यान करते हैं, तो वो योगी लोग परमात्मा को हृदय में उनका अनुभव करते हैं, और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति भक्त करते हैं। और ये भगवान में सब ऐश्वर्य, सब रूप, सब शक्ति और सारा उनका उनकी शक्ति का उनमें समावेश होता है। आत्मा में पार्शियल शक्ति और ब्रह्म में इससे भी कम न्यून शक्ति। तो इसलिए ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और योगी लोग परमात्मा को उनकी गति परमात्मा होती है, और भक्ति से भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। ये हम अभी देखेंगे, समय के मुताबिक हम थोड़ा सा आई विल टेक दैट। तो ब्रह्म अंग कांति तार, भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंग की कांति प्रकाश, ये ब्रह्म है, और ज्ञानी लोग वो ब्रह्म में मिल जाना चाहते हैं, इसलिए सायुज्य वो मिल यू नो ब्रह्म में एक रूप हो जाना चाहते हैं ज्ञानी लोग कांति। और ये कांति क्या है, ये भगवान के शरीर की आभा प्रभा है और निर्विशेष प्रकाश है, और ये जो ब्रह्म ज्योति है निर्विशेष निर्गुण न्यून शक्ति कम शक्ति ऐश्वर्य भी कम, और परमात्मा में चार हाथ वाला विष्णु फॉर्म में ऐश्वर्य शक्ति ये प्रकाशित होती है, लेकिन भगवान में फुल पार्शियल प्रकाशित होती है ऐश्वर्य शक्ति, और भगवान इति सर्वित है भगवान में पूर्ण शक्ति। तो ये अंग कांति ये ज्ञानियों का विषय है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुदादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये श्लोक में क्या कह रहे, यस्य प्रभा उनकी प्रभा, किसकी प्रभा, गोविंद की, गोविंद यस्य प्रभा, यस्य प्रभा ये ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति मैं दिखाऊंगा आगे, आप थोड़ा सा समय, चलो अभी मैं वो दिखाना चाहूंगा। परमात्मा ते हो कृष्ण एक अंश, आत्मा आत्मा है कृष्ण सर्व अंश, परमात्मा उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण अंश है जो समस्त जीवों के आदि आत्मा है। श्री कृष्ण ही परमात्मा के आदि स्रोत है, परमात्मा जो योगी लोग ध्यान करते हैं और ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति, याद रखो, और कृष्ण सर्व का स्रोत। तो यहाँ एकांत से अनस्थित जगत, भगवान कहते हैं कि मैं मेरे एक छोटे अंश से ये सारा विस्तार करता हूँ। तो मैं आपको अभी 10 मिनट बाकी है तो एक डायग्राम बताऊंगा जिसमें ज्ञानी लोगों की मुक्ति, ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं और योगी लोग का डेस्टिनेशन, उन लोग क्या चाहते हैं और भगवान के भक्त क्या चाहते हैं। तो ये है, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, इट्स अ वेरी यू नो भागवत और मुख्यतः ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा है वो बोल रहे हैं, उनके ऊपर ये सारा ये डायग्राम है। तो ये ब्रह्म ज्योति है, ये ब्रह्म ज्योति ज्ञान योगी अटेंड करते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति अटेंड करते हैं। पहले तो मैं आपको सारा डायग्राम बताऊंगा तो आपको पता चलेगा क्या है। तो ये भौतिक जगत है, ये मेरा है कर्सर, यू रिमेम्बर कर्सर, दिस भौतिक जगत। ये विरजा है, विरजा को बोलते हैं कारण समुद्र, ये कारण समुद्र है, विरजा लिखा है विरजा। और ये कारण समुद्र के उस पार सारा आध्यात्मिक जगत है, ये सारा आध्यात्मिक जगत है, ये सारा ये कारण समुद्र के ऊपर, और कारण समुद्र के इस पार सारा भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत है सारा। और ये भौतिक जगत में एक ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड में बीच में, ब्रह्मांड के बीच में ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जिसको हम भू लोक बोलते हैं, अर्थ प्लैनेट भूलोक। और ये भूलोक के ऊपर भूवर लोग, ये राक्षसों का लोग है, और उसके ऊपर स्वर्ग लोग, ये देवताओं, इंद्र, गणपति, हेवनली प्लैनेट्स, 33 करोड़ देवताओं का ये स्वर्ग लोग, और उसके ऊपर महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ये सारे स्वर्ग लोक है। और ब्रह्मा का ये सबसे ऊंचा लोक सत्य लोक, जिसको हम ब्रह्मा का लोक कहते हैं। ये सारे लोग, ये कमल का जो स्टेम है, कमल का नाल है, ये कमल जैसा ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा का लोक। और ये कमल पर ब्रह्मा का जो लोक है, एक कमल की नाल में ये सब लोग जो अभी मैंने बताए, 7 पाताल लोक, पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्र, ये सब ये कमल के नाल में है। और ये कमल का नाल ये विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि कमल से एक कमल का प्रागट्य है, जिसके ऊपर ब्रह्मलोक और ब्रह्मा का प्राकट्य। तो ये पाताल अथवा तो ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और पाताल के बाजू में पितृलोक, हेलस प्लैनेट, पाताल नरक लोक, नरक। तो ये 14 भूमन उनको कहते हैं, 7 स्वर्ग लोग और 7 पाताल लोग और पृथ्वी, तो 14 भुवन। और ये एक यूनिवर्स, वन यूनिवर्स, ऐसे अनंत यूनिवर्स, अनंत ब्रह्मांड, ये करुणोदक्षय विष्णु के उच्छ्वास से निकलते हैं, करुणोदक्षय विष्णु के उच्छ्वास से ये सब ब्रह्मांड, या तो उनके छिद्र, शरीर के जो छिद्र हैं, वो छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो ये भौतिक जगत है, और ये करुणोदक्षय विष्णु ये पहले विष्णु है, 3 विष्णु है, एक कारण समुद्र में करुण दक्षय विष्णु और हर हर ब्रह्मांड में गर्भो दक्षय विष्णु और हर ब्रह्मांड में एक शिरो दक्षय विष्णु, एक शिरो दक्षय विष्णु है, शिरो दक्षय विष्णु। तो हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये विष्णु, ये ब्रह्मा और ये महेश, महेश लॉर्ड शिवा। हर ब्रह्मांड में तीन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे कितने ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, ये अनंत ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये करुणदक्ष विष्णु, करुणदक्ष समुद्र के उस पार आध्यात्मिक जगत में ये ब्रह्म ज्योति जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा प्रभा ज्योति प्रकाश जो जो है वो फैला हुआ है ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश, ये सदाशिव शंकर पार्वती, ये कैलाश, और कैलाश के ऊपर ऐश्वर्य धाम जिसे हम वैकुंठ, वैकुंठ या वैकुंठ लोग बोलते हैं, ऐश्वर्य धाम प्रिडोमिनेटेड बाय स्वीटनेस। और ऐसे कितने वैकुंठ, वैकुंठ है, ये सब वैकुंठ है, ये वैकुंठ लोग है, ये 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 ब्रह्म ज्योति और ये वीरजा और ये ब्रह्मांड हमारा, और ये ब्रह्मांड में अनंत कोटि एक क्षीरोदक्षय विष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु, उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो एक हमारा ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ब्रह्मा का सत्य लोक कमल, ये गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि कमल से ये कमल का स्टैम अथवा तो उनका नाल, और ये नाल में ये सारे 14 भुवन होते हैं। और ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश और ये दुर्गा, ये भौतिक जगत की अधिष्ठाती कंट्रोल करने वाली शक्ति, भगवान कृष्ण की ये शक्ति है, ये दुर्गा शक्ति, ये दुर्गा, ये दुर्गा देवी, ये शैडो ऑफ अलादिनी शक्ति, हम देखेंगे शक्ति। तो ये कर्णोदक्षय क्षीरोदक्षय विष्णु क्षीर सागर में ये सहन करते हैं, और ये शंकर और ये ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ब्रह्मांड के। तो ये भौतिक जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, ये शेष नाग के हर फणा पर ये सारे ब्रह्मांड रहते हैं, ये शेष, ये अनंत शेष, अनंत शेष, ये अनंत उनके हुड होते हैं, उनके ऊपर एक एक ब्रह्मांड का आश्रय, ये अनंत शेष लॉर्ड संकर्षण उनका विस्तार है। तो ये ब्रह्म ज्योति, उनके ऊपर कैलाश, उनके ऊपर वैकुंठ लोग, ये वैकुंठ लोग अनंत है, ये सारे वैकुंठ लोग विष्णु भगवान और भगवान के अवतार, ये वैकुंठ लोग में भगवान के असंख्य अवतार हमेशा मौजूद रहते हैं। जैसे वराह अवतार का ये वैकुंठ लोग है, जैसे वराह अवतार, वराह ये वैकुंठ लोग है, और वैसे ही ये मत्स्या अवतार अर्थात फिश इनकार्नेशन मत्स्या अवतार, ये हमेशा वैकुंठ लोग में ये सब अवतार हमेशा मौजूद रहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के ये सब अवतार है, और ये परशुराम अवतार, ऐसे अनंत बुद्ध अवतार, ये टोटल इनकार्नेशन, टोटल अथवा कच्छप कूर्म अवतार, कच्छप अवतार कुर्म और नरसिंह अवतार नरसिंह देव ये सब अवतार वैकुंठ में हमेशा मौजूद होते हैं। और कितने वैकुंठ लोग, ऐसा एक वैकुंठ लोग है ये, तो ऐसे कितने वैकुंठ लोग हैं, अनंत वैकुंठ लोग। और भगवान के अवतार, कृष्ण के अवतार भी अनंत। तो ये वैकुंठ लोग, वैकुंठ के लोग के ऊपर माधुर्य धाम कृष्ण लोग, ये गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, और इनके नीचे मथुरा धाम, द्वारका धाम और अयोध्या धाम, ये स्वरूप शक्ति का ये विस्तार है, ये कृष्णा स्वरूप शक्ति। तो कृष्णा गोलोक वृंदावन में हमेशा अपनी अंतरंग लीलाएं राधा रानी के साथ, उनके अंतरंग गोपियां ग्वाल मित्र के साथ गोलोक वृंदावन में नित्य लीला करते हैं। तो ये गोलोक वृंदावन है। तो अभी मैं क्या कह रहा था कि योगी और ज्ञानी, योगी और भक्त, इन तीनों की गति में समझा रहा था, आपको बता रहा था। तो भक्त, सो जो योगी है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी, ये ज्ञानियों की गति है ब्रह्म ज्योति, या तो ये ज्ञान योगी ये ब्रह्म ज्योति में, अथवा तो भगवान के प्रकाश में, वहां कोई एक्टिविटी है नहीं और कोई संग है नहीं, अकेलेपन में इधर उधर, जैसे सूर्य के किरण में रजकण इधर उधर घूमते रहते हैं भक्त, तो ऐसे अकेले अकेले जीवात्माएं उधर, जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों की यह मुक्ति है, वो घूमते रहते हैं, कोई संग नहीं है, कोई विविधता नहीं है, भगवान की ब्रह्म ज्योति में ज्ञानियों की ज्ञानियों की गति है, ये ज्ञानियों की ब्रह्म ज्योति, ये गति, ये ब्रह्म ज्योति, ये सारा ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं। बोलते हैं ना, कहते हैं ना कि भगवान में मिल गया, अथवा तो तेज में मिल गया, अथवा तो निराकार गति, तो निराकारियों की गति है। और योगियों की गति क्या है, योगियों की गति है परमात्मा। तो योगी ये परमात्मा, जो कृष्ण भगवान का विष्णु रूप है, हृदय में विष्णु का ध्यान करते हैं, तो योगी लोग विष्णु मूर्ति जो हृदय में है, तो वैकुंठ, ये योगियों की मुक्ति वैकुंठ है। ये परमात्मा क्षीरोदक्षई विष्णु, ये योगियों की, योगी ये चाहते हैं। सो ये योगी जो विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, तो उनकी गति है ये विष्णु, जो क्षीरो कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, एक क्षीरोदक्षय विष्णु है, एक क्षीरोदक्षय विष्णु, ये ब्रह्मांड में जो विष्णु है क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये चार हाथ वाला जो स्वरूप है, वो योगियों की मुक्ति है, ज्ञानियों की ब्रह्म ज्योति विष्णु, चार हाथ वाले फॉर्म विष्णु। तो और भक्ति योगी भक्त, भगवान का भक्त जो है, वो उनकी गति क्या है, वो बोलता है क्या, यह मंत्र जप करता है, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहुंच गए वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन ये भक्तों की गति, भगवान का धाम, भगवान के साथ, भगवान के पास, उनकी अंतरंग लीलाओं में प्रविष्ट। तो इससे बोले हम क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ठा, नित्य लीलाओं में भक्त प्रविष्ट होता है, नित्य लीला। गोलोक वृंदावन में भगवान की नित्य लीला, ये नित्य लीला का प्रदर्शन है। भगवान का यहाँ चराने जा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है और यहाँ गोपियों के साथ मिल रहे हैं, राधा रानी के साथ ये निकुंज में भगवान कृष्ण मंजरी के रूप में भक्त। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो भक्ति भक्त होता है उनकी गति क्या है, ये पृथ्वी पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं। तो ये गति है अलग अलग भगवान के सानिध्य। तो कल हम बात करेंगे ज्यादा, तो ये डायग्राम कल से भी थोड़ा सा और ज्यादा हम उनके उनका नॉलेज आपको देंगे थोड़ा सा, ताकि आपको ये सनातन शिक्षा, आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी से होमवर्क है चैतन्य चरितामृत आपको खरीदनी होगी, तो उसमें मध्य लीला उसमें 20 चैप्टर और अंत मध्य लीला का 20 21 22 23 24 25 और 26 ये सब चैप्टर आपको पढ़ने होंगे और आपको समय दिया जाएगा 6 महीना। और यू हैव टू, मैं आपको यहाँ सब उनकी पूर्व भूमिका दे दूंगा, सारी कथा सनातन शिक्षा, ये मुश्किल है सनातन शिक्षा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक शिक्षा दी, वो शिक्षा हम 3 दिन में कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये पढ़ना होगा। और उनका जो भी सवाल हो ईमेल में आई ट्राई टू, और ये प्रभु जी भी हैं, कई लोग हैं भक्त लोग जो आपका सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो याद रखो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20, दिस इज अ 20 चैप्टर 20th चैप्टर सनातन शिक्षा। तो 5 चैप्टर आपको 6 महीने में पढ़ना है, आसान है। तो कोई सवाल, किसी को कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन एट ऑल? यस प्रभु जी, पितृलोक इज नियर नर्क लोक, राइट बिसाइड नर्क लोक, यस पाताल लोक, पाताल लोक पितृलोक, हेलिस प्लैनेट। हाँ, तो 3 पीढ़ियां, 3 पीढ़ी तक पितृलोक पितृलोक में रहते हैं। अगर उनके उनके पुत्र पिंडदान से उनकी मुक्ति न करें, ये सारा दूसरा सब्जेक्ट मैटर वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये श्राद्ध करते हैं हम पितर पक्ष में श्राद्ध करते हैं, तो ये पितरों का उद्धार करने के लिए। तो वहां पितृलोक में पितृलोक पाप पुण्य की आदान प्रदान उनका उनकी जांच होती है, सब गर्व पुराण सारा। तो पितृलोक नरकलोक के बगल में है और वहां 3 पीढ़ी तक पितर लोग वहां रहते हैं, अगर आप उनका उद्धार न करें। तो भक्त आपो आप सारे पितर पितर लोग का आपो आप उद्धार करता है। हम कल बात और छेड़ेंगे। और कोई सवाल? हाँ हाँ, कल बताऊंगा, लेकिन आज झटपट ये कवर की बात कर रहे हैं, ये फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस माइंड इथर एयर, सो अर्थ वाटर फायर एयर इथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, 1 कवर कम्स फ्रॉम अनदर प्रीवियस कवर। सो ईगो में से इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कवर से माइंड, माइंड कवर से सो ऐसे पैदा होते हैं। तो ब्रह्मांड के 10 ये कवर है, ये बात करें सो ये ब्रह्मांड, यानी कल बात करेंगे, आज बहुत समय हो चुका। और कोई सवाल? ये कवरिंग है, ये कवर ब्रह्मांड के कवर। और कोई सवाल? कल ये थोड़ा ज्यादा सा ले लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और आपकी गति, आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, गोलोक में क्या हो रहा है, वैकुंठ में क्या हो रहा है, सब डिटेल आपको बताई जाएगी। लेकिन दिस विल बी साइड ट्रैक फ्रॉम सनातन शिक्षा, दिस इज वन पार्ट ऑफ सनातन शिक्षा, फ्यू श्लोक ऑफ सनातन शिक्षा देखेंगे हम। और कोई सवाल, और कोई सवाल? यस सिद्ध। सीधा डायरेक्ट लिफ्ट, लिफ्ट इट्स अ लिफ्ट, नो मजले, पहला मजला, दूसरा मजला, कोई नो मजला, लिफ्ट ऑल द वे। लिफ्ट में वन बटन ओनली, भक्त के लिए लिफ्ट होती है और उनमें एक बटन होता है गोलक, दबाओ हरे कृष्ण बटन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद ने ये वचन वचनबद्ध उन्होंने घोषणा की, जो हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला करेंगे, चार नियमों का पालन करेंगे, तो अगर कुछ कमी रह जाएगी तो मैं पिछले दरवाजे, गोलोक वृंदावन के पिछले दरवाजे खड़ा रहूंगा, और अगर जय विजय एंट्री आपकी रोक ले तो पिछले दरवाजे से एंट्री हो जाएगी, पिछले दरवाजे प्रभुपाद जी खड़े रहेंगे। तो कल हम और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।